हमारे जिंदगी के बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, बहुत सारे अहम फैसले होते हैं, जिनमें से विवाह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। BibleWani.com में मैं मोनिका आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ और आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप इन संदेशों को सुनते हैं और अपने लोगों के साथ इसे शेयर भी करते हैं। आइए आज के भी इस संदेश को हम सुनेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि एक विश्वासी को किससे शादी करनी चाहिए। अनेक लोगों का विचार है शादी करनी चाहिए कि नहीं। बाइबल कहती है शादी करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसी प्रकार हव्वा का भी अकेले रहना अच्छा नहीं। विवाह सब बातों में आदर की बात मानी जाए, यह एक विश्वासी के पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। और उत्तर यह है कि एक विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करनी चाहिए। लेकिन उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, यह हम इस संदेश में सुनने जा रहे हैं। इसमें हम वही बातें करेंगे जो बाइबल हमें आदेश देती है। यह किसी को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि यह जानने के लिए है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना और निर्देश देना चाहते हैं। निर्णय लेने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बहुतों का विश्वासी रूपी जहाज भवसागर में डूब गया। एक गलत निर्णय लेने के कारण बहुत से लोग पछतावे के दलदल में पूरी जिंदगी बस धंसते ही चले जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि काश किसी से सलाह ले ली होती। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक जीवन साथी खोजो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि विवाह स्वर्ग में तय किया जाता है या बनाया जाता है, लेकिन ये जरूर लिखा है अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक जीवन साथी खोजो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। भावनाओं में मत बहो। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना यह स्वाभाविक है। सुंदरता सभी को लुभाती है, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते ध्यान रहे, सुंदरता केवल बाहरी और कुछ दिनों की होती है। वास्तविक और सच्ची सुंदरता अंदरूनी होती है। अंदरूनी से मेरा तात्पर्य यह है आत्मिक और बौद्धिक। बाइबल पढ़ें, बुद्धिमानी से पहचान करें कि क्या इस व्यक्ति के अंदर विश्वासी के गुण हैं कि नहीं। क्या यह परमेश्वर से प्रेम करता है या करती है? कई बार माता पिता जो एक विश्वासी नहीं है या परिवार के सदस्य दबाव देने लगते हैं कि यह एक बढ़िया व्यक्ति है, इससे विवाह कर लो। लेकिन जीवन आपको निभाना है, उन्हें नहीं। वो आपका भला चाह रहे होंगे, लेकिन आपको स्वयं मालूम है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। समलिंगी विवाह पाप है। समलिंगी का मतलब लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ विवाह ना करें। परमेश्वर कहता है या तो घिनौना काम है। जो काम परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना है, यदि कोई भी ऐसा करे तो उसके जीवन में कैसे आशीष आ सकती है? यह तो परमेश्वर का विरोध करना हुआ। यह परमेश्वर का नियम है। अनेक देशों में इसे अनुमति दी जा रही है, लेकिन यह बौद्धिक रूप से भी गलत है और आत्मिक रूप से भी। मैं इसके विषय में ज्यादा नहीं जानता ये क्यों करते हैं। कई बार हम सोच में पड़ते हैं कि उनकी संतानें कैसी होंगी, हो ही नहीं सकती। फिर वो किसी अनाथ बच्चे को गोद लेंगे और फिर वो बच्चा बड़ा होने पर किसको माँ कहेगा और किसको पिता, मतलब उसकी जिंदगी भी खराब। मॉडर्न या सभ्यता के नाम पर हम कहाँ जा रहे हैं? एक मसीही समाज पढ़ा लिखा समाज है। कहने का मतलब है हम ताउम्र बाइबल पढ़ने और पढ़ाने और सिखाने से जुड़े हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी अनेक बार अपने लोगों से और फरीसी सदूकियों से कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा? मतलब हमें पढ़े लिखे होना चाहिए। बहुत बार देखा गया है स्त्री यदि ज्यादा पढ़ी लिखी है तो कम पढ़े लिखे पुरुष में हीन भावना आने लगती है, लेकिन पुरुष यदि अधिक पढ़ा लिखा है तो उतनी समस्या नहीं होती, क्योंकि बाइबल कहती है पति पत्नी का सिर है और पति को परिवार का रख रखाव और शिक्षक के रूप में कार्य करना होता है। आदम भी हव्वा से उम्र में बड़ा था और लिखा है स्त्रियां अपने पति से सीखें, इसलिए दोनों को चाहिए कि दोनों की शैक्षिक योग्यता बढ़िया हो ताकि वे अपनी आने वाली संतानों को भी शिक्षित कर सकें। किसी को बदलने के लिए शादी मत करो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यदि आप सोचते हैं कि शादी के बाद मैं इसे बदल लूंगा या बदल लूंगी, तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि यह आप नहीं है जो किसी को बदल दोगे। किसी का मन बदलना पवित्र आत्मा का काम है, इससे आपको निराशा ही हाथ लगेगी। कई बार किसी लड़के को या लड़की को कोई पसंद आ जाता है क्योंकि वो खूबसूरत है या कद काठी अच्छी है, लेकिन पता चलता है कुछ अवगुण और कुछ बुरी आदतें हैं, तो उस आदत को नज़रअंदाज करके सोचते हैं शादी के बाद सब कुछ बदल दूंगा या बदल दूंगी, लेकिन शादी के बाद पता चलता है वो आदत कई गुना बढ़ गई। कहते हैं जहर खाने वाला व्यक्ति अकेले मरता है, लेकिन शराब या नशा करने वाला व्यक्ति अपने परिवार को प्रतिदिन मारता है। ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने इस प्रकार विवाह किया और बाद में उनके घरों में रोजाना कलह और क्लेश, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रार्थना और आत्मिक जीवन की समाप्ति हो चुकी है। ऐसे घरों में जब पत्नी कहती है चलो हम आराधना या बाइबल अध्ययन के लिए चलें, तब पुरुष कहता है मुझे दूसरी जगह जाना है, तुम चुनाव कर लो, तुम्हें क्या करना है। ऐसे में घर का माहौल बिगड़ने लगता है। ऐसा ही पुरुषों के साथ भी होता है। भारत आज भी इस महामारी से जूझ रहा है जिसका नाम है जातिवाद। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमें शादी करनी है तो अपनी ही जाति से। संत पौलुस इस प्रकाशन को हमारे सामने रखते हैं कि अब ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। एक लालची व्यक्ति से विवाह ना करें। एक घटना बताना चाहता हूँ। हमारे कलीसिया में एक विश्वासी बहन का विवाह होने वाला था। लड़का और लड़की दोनों, मतलब जोड़ी, सुंदर दिख रही थी। दोनों पक्षों ने पक्का करने के लिए आपस में बातें कर ली और एक दिन कलीसिया के कुछ लोगों के सामने प्रार्थना के साथ इंगेजमेंट, मतलब सगाई भी पूरी हो गई। अब कुछ दिनों के बाद विवाह होना था, लेकिन तभी पता चलता है कि लड़के के पक्ष से बातें निकलना शुरू हुई कि तुम लोगों ने हमारा अच्छे से स्वागत नहीं किया। पूछने पर पता चला सोने चांदी से हमारा स्वागत करना था, मतलब कुछ जेवर भी देने चाहिए थे। जब यह बात मुझ तक पहुंची तब मैंने कहा यह रिश्ता यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि यह एक तो गैरकानूनी बात है कि कोई दहेज की मांग करे, दूसरा जब यह विवाह से पहले ऐसी मांग कर रहे हैं तो विवाह के बाद तो शायद पूरी जिंदगी ही ससुराल पक्ष से भीख की तरह लड़ लड़ कर मांगते रहेंगे। ये शर्मनाक बात है। ऐसी ही मानसिकता के कारण आत्महत्याएं और कुरीतियां पनपती हैं। ऐसे व्यक्ति से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, विवाह नहीं करना चाहिए। यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुते, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की क्या संगति। वचन कहता है जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया है और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलती है, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि ना उनसे विवाह शादी करना, ना तो उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे और दूसरे देवी देवताओं की उपासना करवाएंगे। इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुमको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा वर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। दोस्तों याद रखें, मसीही विवाह आदर और पवित्रता की बात है। इसमें विवाह के पश्चात रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता। मतलब तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है। तलाक परमेश्वर की नजरों में अच्छी बात नहीं है, इसलिए विवाह प्रार्थना के साथ, परमेश्वर की मर्जी के साथ और सोच समझ कर करना चाहिए। बहुतों का आत्मिक जीवन विवाह के बाद बहुत बिगड़ गया, लेकिन बहुतों की सेवकाएं भी विवाह के बाद नाश हो गई। यह एक गंभीर मसला है। याद रखें, यदि आप विवाह के योग्य एक भाई या बहन हैं और विवाह करने के लिए सोच रहे हैं, तो प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कदम बढ़ाइए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब कदम बढ़ाएंगे, प्रभु आपके वैवाहिक जीवन में बड़ी बरकत देगा, बड़ी आशीष देगा और जीवन पर्यंत वो आप दोनों की अगुवाई भी करेगा। प्रिय मित्रों, यदि आज का संदेश आपको अच्छा लगा है, कुछ प्रेरणा या कुछ शिक्षा आपने हासिल की है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वेबसाइट को, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।